प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा से बहुत अद्भुत और अच्छी बातों को सीखा है और आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में देखा, परमेश्वर ने हमें कब्रिस्तान से उठाया, अर्थात हम मृतक थे वहां से हमें उठाया, जो पाप में पड़े हुए थे वहां से हमें उठाया और मसीह में उसके साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। तो भविष्य क्या है, इस पर हम देखेंगे। तो इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के पास बैठकर आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें, मनन चिंतन कर सकें, उसमें से सीख सकें। आज जब हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं समझ सकें, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करने पाएं। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, थक गए हैं, परेशान हैं, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से। पिताजी, आप उन सब की सहायता करें। जो बीमार से पीड़ित हैं, आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि वे स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम को धन्य कहने पाएं। आज के इस अध्ययन के समय को हम में से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भविष्य का क्या होगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। एक दिन मैं प्रदर्शनी में खड़ा होऊंगा और स्वर्गदूत आते जाते मुझे देखकर कहेंगे, इसे देखो, यह भटका हुआ था और उद्धार के योग्य भी नहीं था, परंतु आज यह स्वर्ग में है। जी हाँ, यह तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि यह यहाँ स्वर्ग में है। यह अनंत काल तक परमेश्वर की स्तुति के लिए यहाँ पर होगा। मुझे वहाँ कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी, परंतु मैं वहां होऊंगा और यह मेरे लिए अच्छा होगा। मैं स्वर्गदूतों के साथ अपने उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी समझ में तो यह एक अद्भुत आशा है। यह अनुग्रह के द्वारा है। यह अद्भुत अनुग्रह है जिसे गीत का लेखक जॉन न्यूटन कहता है कि मुझ निकम्मे को बचाया। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ध्यान दीजिए, ये महान पद विश्वासियों के जीवन की गाथा का अंत करते हैं, उसकी अतीत, उसका वर्तमान जीवन और उसका भविष्य। हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया और मसीह में स्वर्गिक स्थानों में उठाता है, और एक दिन हम स्वर्ग में परमेश्वर के अनुग्रह का प्रदर्शन कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, हमारे अपने कर्मों और योग्यताओं पर कुछ भी आधारित नहीं है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार ही से, अर्थात यह एक विशेष बात है, मुख्य बल परमेश्वर के अनुग्रह पर है। यह अयोग्य और अनाधिकारी पर किया गया अनुग्रह है। अब आप यह न कहें, मैं उद्धार पाने की आशा करता हूँ। यदि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है तो आप निश्चय ही कह सकते हैं, मेरा उद्धार हो गया है। अब कोई कहेगा, ओह मैं तो ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो भविष्य पर भरोसा नहीं है। मेरे मित्रों, आपका उद्धार परमेश्वर के हाथ में है, आपकी विश्वास योग्यता पर नहीं। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसे हम फिलिपियों की पत्री 1:6 में पढ़ते हैं। आप परमेश्वर की संतान होकर उससे दूर हो सकते हैं, परंतु वह आपके निकट आ जाएगा, क्योंकि उसके अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है। जी हाँ, आपका उद्धार पूरा हो चुका है। आपके लिए प्रभु यीशु के काम के आधार पर और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के आधार पर कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वचन पर विश्वास किया और प्रभु यीशु पर भरोसा किया, आप कह सकते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है। यह मैं आशा करता हूँ या मैं कोशिश करूँगा वाला उद्धार नहीं है। यह उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह ही से है, जो विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। यह आपका अपना कार्य या कर्म नहीं है, यह परमेश्वर का वरदान है जो मुफ्त में आपको मिलता है। सिर्फ आपको उसे ग्रहण करना है। परमेश्वर के अनुग्रह की आध्यात्मिक परिभाषा है अनर्जित विशेष कृपा। मैं इसे कहता हूं कार्यकारी प्रेम। डॉक्टर लुईस पेरी शॉपर, उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात कही थी, पापियों के लिए परमेश्वर के अनुकंपा पूर्ण प्रेम और अब उन्हें मसीह में दिए गए अनुग्रह में एक स्पष्ट अंतर दिखाया गया है। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों एक ही नहीं है। परमेश्वर पापियों से अनुच्चारित अनुकंपा से प्रेम कर सकता है, परंतु दिव्य न्याय और पवित्रता की पुकार के कारण उन्हें धार्मिक विनाश से बचाने में असफल हो। तथापि जैसा पहले कहा जा चुका है कि यदि प्रेम पापी के लिए कृपा पूर्वक न्याय और पवित्रता की अनिवार्यताओं को पूरा कर पाए, तो परमेश्वर का प्रेम बिना बाधा के उसके लिए कार्य कर पाएगा जिनके लिए सिद्ध प्रतिस्थापन बलि चढ़ाई गई है। यह क्रूस पर मसीह की उपलब्धि थी। दूसरी ओर उद्धार में परमेश्वर का अनुग्रह पाप के प्रति यीशु की बलि के माध्यम से धार्मिक न्याय द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के आधार पर पापी के लिए क्रियाशील परमेश्वर की अबाधित अनुकंपा है। परमेश्वर का प्रेम बचाना चाहता है, परंतु धर्मी होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह स्वतंत्र है, क्योंकि मसीह मर गया। अतः ध्यान रखा जाए कि परमेश्वर का अनादि काल से उद्देश्य यही नहीं कि उसके प्रेम का प्रदर्शन हो, यद्यपि उसके अनुग्रह के तुल्य उसका प्रेम और उसकी दया का यहाँ उल्लेख है और मसीह की मृत्यु में व्यक्त है, परंतु यह उसके अनुग्रह का प्रदर्शन है। मेरे मित्रों, अपने अनंत कोष से परमेश्वर पापियों पर अनुग्रह की वर्षा करता है, जिसमें ना बाधा है ना रोक है। अब विश्वास उद्धार का कार्य साधक कारक है। यही एकमात्र कारक है जिसे पापी उद्धार के महान विनिमय में लाता है, परंतु यह भी परमेश्वर का वरदान है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे, यदि विश्वास परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर ने मुझे विश्वास का वरदान नहीं दिया है, तो यदि मैं विश्वास न करूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इसका प्रत्युत्तर है, परमेश्वर ने अति स्पष्ट कहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा। परमेश्वर उन सबको विश्वास का दान देता है जो सुसमाचार के संदेश पर कान लगाते हैं, अर्थात सुनते हैं। दूसरा क्रुंथ की पत्री में यह शिक्षा है, मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा डाला हुआ था। क्यों? क्या इसलिए कि उसके प्रकाश से देखने वालों की आंखें अंधी हो रही थी? जी नहीं, वह विलोप हो रही महिमा को छिपा रहा था। यह मूसा के तंत्र और व्यवस्था की महिमा थी। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, परंतु वे मति मंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज पर्दे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मसीह पर पर्दा नहीं है। सुसमाचार स्वतंत्रता से प्रसारित किया जाता है। परंतु दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हमें कहा गया है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब पर्दा हट जाएगा। अब जब भी प्रभु की ओर फिरना चाहें आप उसकी ओर फिर सकते हैं, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। अब कोई यह कहे, हो सकता है मुझे विश्वास का वरदान नहीं दिया गया है, समस्या यह नहीं है। समस्या तो यह है कि आप अपने पापों का त्याग करना नहीं चाहते हैं, मेरे मित्रों, जिसे हम बाइबल में स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात बाइबल इसे भी स्वीकार नहीं करती है। आप जब भी अपने पापों से ऊब जाएं, जब आप अपने आप से फिर जाना चाहें, बाइबल में अस्वीकार्य हर बात से मन फिराना चाहें, तो आप प्रभु यीशु की ओर फिरें, आपको विश्वास प्राप्त होगा, आप उसमें विश्वास ला पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं मनुष्यों से सुनते सुनते थक गया हूं कि उनके विश्वास की कमी का कारण उनकी मानसिक समस्याएं हैं। सच तो यह है कि मानसिक की अपेक्षा उनकी समस्या नैतिकता की है, यदि वे उसका सामना करने को तैयार हों। आज अनेकों के मन में पाप की समस्या है। पवित्र जन भी इसके कारण उद्धार का आनंद नहीं ले सकते हैं। आज मनोवैज्ञानिकों ने खोजा है, मानसिक अस्थिरता और भाव चेतना का मुख्य कारण है कि मनुष्य अतीत के चूक और गलतियों में वास करता है और मसीह को निहारने की अपेक्षा अपने पर ही ध्यान केंद्रित कर देता है। विश्वास उद्धार का साधन है। स्पर्जन ने कहा, यह मसीह में आपका आनंद नहीं है जो आपका उद्धारक है, मसीह ही है। यह मसीह में अपनी आशा नहीं जो आपकी उद्धारक है, मसीह ही है। यह मसीह में आपका विश्वास भी नहीं, यद्यपि वह साधन है। यह मसीह का लहू और गुण है, यही सामर्थ है, यही उद्धार है। मेरे प्रियो, जब पौलुस कहता है यह तुम्हारी ओर से नहीं, तो वह विश्वास के लिए नहीं, उद्धार के लिए कह रहा है। उद्धार एक ऐसा वरदान है जो घमंड का निराकरण करता है। यह परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। परमेश्वर का वरदान यही है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी कविता हैं, उसकी नई सृष्टि हैं। पौलुस उस स्थानीय कलीसिया की चर्चा नहीं कर रहा है। ध्यान दें, यह पेंतिकोस्त के दिन से उठाए जाने के दिन तक विश्वासियों की देह है। विश्वासियों की यह देह उसकी बनाई हुई है और मसीह में एक नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, हम किस काम के लिए बनाए गए हैं? भले कामों के लिए। इस पत्री के अंत में हमें कहा जाएगा कि हमारा आचरण परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। हम स्वर्गिक स्थानों में मसीह में उपस्थित तो हैं, परंतु इस पृथ्वी पर हमें ऐसा आचरण रखना है कि उसके नाम का महिमान्वन हो। हम आगे देखते हैं निर्माण विधि। यह परमेश्वर के मंदिर कलीसिया की निर्माण विधि है। आइए इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद को पढ़ें। लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ध्यान दीजिए, इफिसुस की कलीसिया में अधिकांश विश्वासी अन्य जातियों में से थे। वहां यहूदियों की एक छोटी सी बस्ती थी। अन्य जातियों को खतना रहित भी कहा गया है। उन्हें यह नाम खतना वालों यहूदियों ने दिया था। परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों में अंतर रखा था। जो अब्राहम से चलकर पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण तक था, अन्य जातियों में इसराइल का एक विशेष स्थान था। अन्य जाति उनमें केवल खतना करवा कर ही एक हो सकते थे, अर्थात आ सकते थे। समय के अंतराल में यह अंतर मनमुटाव का कारण बन गया। इसराइल अपनी दशा का घमंड करने लगता है और अन्य जातियों को तुच्छ समझता है। इस कारण दोनों ही में एक दूसरे के लिए घृणा उत्पन्न हो गई थी। मेरे प्रियो, इन पदों में अन्य जातियों की दुर्दशा और दुखद अवस्था का वर्णन है। यह एक खोए हुए मनुष्य का दुखद चित्रण भी है। खो जाने का अर्थ है, देखेंगे, पहला, मसीह से अलग। यह एक खोए हुए मनुष्य की सर्वोत्तम व्याख्या है। यह मसीह में का विपरीत है। दूसरा अर्थ है, इसराइल की प्रजा के पद से अलग, अर्थात इसराइल की नागरिकता से वंचित। यह एक अन्य जाति की सही परिभाषा है। उनके पास इसराइल के समान परमेश्वर द्वारा दिया गया धर्म नहीं था। उन्हें पुराने नियम में से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपनाने का अधिकार नहीं था। अधिकार तो हमें भी नहीं है, क्योंकि वे प्रतिज्ञाएं केवल इसराइल के लिए हैं। तीसरा है, प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी न थे। परमेश्वर ने इसराइल जाति से कुछ प्रतिज्ञाएं की थी। परमेश्वर की वाचा आज भी मान्य है, परंतु वे किसी भी अन्य जाति के साथ मान्य नहीं है। परमेश्वर ने इसराइल के वंशजों को इसराइल देश पूरा देने की वाचा बांधी थी। एक दिन वे उसे प्राप्त करेंगे, परंतु परमेश्वर की शर्तों पर, न कि उनकी अपनी शर्तों पर। मैं इसराइल देश में पुराने नियम की किसी भी प्रतिज्ञा का दावा नहीं कर सकता। वह इसराइल से बात करता था, मुझसे नहीं। मेरे लिए उसकी प्रतिज्ञा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। चौथा अंतर है, आशाहीन। संसार के अन्य धर्मों को देखें, उनमें आशा नहीं है। वहां पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा नहीं है। मरणोपरांत के जीवन के विषय में वे स्पष्ट कुछ भी नहीं कह सकते। आशा रहित जीवन अन्य जातियों की त्रासदी है। खोए हुए के लिए केवल वर्तमान का जीवन ही अर्थ रखता है, और यहाँ के आनंद से वे वंचित होकर दोगुना आशाहीन हो जाते हैं। पांचवी बात है, जगत में ईश्वर रहित। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया है, परंतु यह कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। ईश्वर रहित होना मनुष्य का चुनाव है। वह अंधकार में भटक रहा है। यदि मैं खोए हुए मनुष्य की दशा में होता तो दारू पीकर सब कुछ भूल जाने का प्रयास करता। कोई कर भी क्या सकता है। एकमात्र आशा इस संसार में यही है कि जीवन का रस जितना निचोड़ सके निचोड़ लो, क्योंकि भविष्य की कोई आशा तो है ही नहीं। आशाहीन और ईश्वर रहित होना ऐसा ही है। मेरे प्रियो, पौलुस द्वारा व्यक्त यह दशा भयानक और दर्दनाक है। अब देखिए कि क्या होता है। इफिसियों की पत्री 2:13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ध्यान दीजिए, इसराइल के मंदिर में अन्य जातियां आ सकती थी परंतु उन्हें बहुत दूर रहना होता था। वे अन्य जाति जो मसीह में है उनके लिए सब बदल गया है। वे मसीह से रहित थे परंतु अब वे मसीह में हैं। उन्हें परमेश्वर से अलग रखने वाली बाधाएं हट गई हैं। वे निकट लाए गए हैं परंतु अपने कर्मों एवं योग्यताओं से नहीं, प्रभु यीशु के लहू से। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर मुझसे और आपसे, हम सबसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम भी उसके निकट आए। यदि आज हम परमेश्वर से दूर हैं, उसके प्रेम से, उसके आशीषों से, उसके शांति से वंचित हैं और हम आशा रहित जीवन जी रहे हैं, तो आज हमारे लिए मौका है कि हम मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि सारी बातें, सारी बाधाएं हट चुकी हैं। प्रभु यीशु आज मेरे लिए है, आपके लिए है। क्या आप चाहते हैं कि आप उस असीम शांति को प्राप्त करें जो परमेश्वर सारे मानव जाति को देना चाहता है? यदि हाँ, तो प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में महान आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम सफर है मेरा।